ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ثم يؤلف ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ریڈی آپ لوگ؟ ارم ہم آن لائن پہ ہیں ساتھ، مجھے لینے کی ضرورت تو نہیں. چلیے، موضوع چونکہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے. اوکے ارم، آپ ٹیک کیئر کریں. وہ کیا پھر شروع کریں گے، اور ایک چھوٹی سی چیز پھر نظر میں آ گئی تو بہتر ہے کہ اس کو بول دوں تاکہ آپ کا یہ مضمون پورا ہی ہو جائے. یہ جو بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ عورت عورت کے سامنے کس حد تک جا سکتی ہے یا کتنا اس کا پردہ ہے یا کس طرح کے حالات ہیں، ایک دو روایتیں آپ کے سامنے اور رکھ دیتی ہوں جس سے مزید انشاءاللہ آپ کا شرح صدر بھی ہوگا. تاکہ سوئمنگ پولز میں عورتوں کا عورتوں کے سامنے جانا، وہاں عورتیں دوسری بھی ہوتی ہیں تیسری بھی ہیں، تو اس کے بارے میں ایک روایت سن لیجیے، شاید آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے. ابو عبیدہ کو لکھا، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں. حمام سمجھ گئے نا، جہاں شاور لیا جائے، تو آج کے دور میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوئمنگ پول. حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے. یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے. اب اس حدیث کو آپ، اس بات واقعے کو جو آپ سنیے، ابن جریر میں اور بیہقی اور ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، وہاں سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عورت بالکل نیکڈ یا بالکل ایسا ڈریس پہن کر کے جس کو آپ کپڑا بھی نہ کہیں تو پھر دوسری عورتوں کے سامنے بھی نہ جائیں. ایز اٹ از سوئمنگ منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر عورتوں میں، لیکن پھر اس وقت آپ کے جسم پہ ایسا کپڑا ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کے جسم کے اوپر دوسروں کی نظر نہ پڑے اس طرح سے کہ دیکھ کے رغبت پیدا ہو. کئی طریقے اس کے ہو سکتے ہیں، ابایا پہن کے سوئمنگ کر لیں، جس چیز کی آپ عادت ڈال دیتے ہیں وہ عادت ہوتی ہے. لیکن یہاں خاص طور پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو آپ کی باتیں باہر دوسروں کو بھی جا کے بتائیں ان کی بات کو درست نہیں ہے. پھر ایک اور چیز ہے، یہ دوپٹے کا جو ایشو ہوتا ہے، عورت عورتوں میں دوپٹہ لے کے نہ لے، سلیوز عام رکھے، دوسری کون سی رکھے، کس طرح سے، تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث سن لیجئے کہ ایک دفعہ کسی، بلکہ میں حدیث پڑھ کے سناؤں تو، کیونکہ ایسی باتوں کو زبانی کروں گی تو شاید آپ میں سے کوئی سوچے گا کہ یہ میرے خیالات ہیں، تو میرا اس میں اپنا کوئی خیال نہیں ہے، سن لیتے ہیں. ایک روایت حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور اس کے دوپٹے بنا لیے. کب؟ جب یہ آیت اتری کہ ول یضربن بخمرہن علی جیوبہن، یعنی اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈال لو. اس کو سن کر عورتوں نے اپنے سینوں کو چھپا لیا. انصار کی عورتوں میں کوئی ایک بھی ایسی نہ تھی جو اس آیت کو سن کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہی ہو. ہر ایک اٹھی اور ہر ایک میں سے کسی نے اپنا کمر پٹ کھولا، کمر پہ جو پٹکا سا باندھتے ہیں عرب لوگ، اور کسی نے چادر اٹھائی اور فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا. دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت جتنی بھی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھی. حضرت عائشہ اس میں یہ بھی کہتی ہیں کہ سب نے موٹے کپڑے چھوٹے اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنا لیے. پھر اسی طرح سے اس بارے میں ایک اور بات آتی ہے، اور وہ کیا ہے، داہیہ کلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی कबाती बोलते हैं उसको, यानी किबती लोग बनाते हैं उसको बारीक मलमल, जैसे हमारे यहाँ शायद ढाका की मारूफ है जिसमें सी थ्रू होती है ऑलमोस्ट। आपने इसमें से एक टुकड़ा मुझे दिया और फरमाया कि एक हिस्सा फाड़ कर अपना कुर्ता बना लो और एक हिस्सा अपनी बीवी को दुपट्टा बनाने के लिए दे दो, मगर इनसे कह देना कि तजअल तहतहु सौबन ला युसिफहा, इसके नीचे एक और कपड़ा लगा ले ताकि जिस्म की साख्त अंदर से ना झलके। यह अबू दाऊद के लिए रिवायत है किताबुल लिबास में। तो वही बात है कि जितना तकवा बढ़ता है उतना इंसान छुपता है। अब देखिए कि मिसाल है कि मैंने आपके सामने स्कार्फ लिया हुआ है ना, अब इसमें अगर आप देखें भी तो सर से लेकर यहाँ इस जितना हिस्सा आपको इधर टेबल पे मेरा दिखता है, कोई ऐसी चीज तो नहीं दिखती ना कि जिससे एक इंसान अनकंफर्टेबल फील करे। अब ये एक मारूफ तरीका है, अगर इस तरह मेरा ये रवैया आपको अच्छा लगता है। कभी कभी घर में काम कर रहे हैं, बेटी है घर में, बहू है, बहने हैं आपस में, अब इसकी जगह आप दुपट्टा उतार लेते हैं, दुपट्टा भी नहीं, इट्स ओके। असल हुक्म पे नजर रखिए कि औरत भी अपनी शहवत दूसरी औरत को नहीं दिखा सकती। अगर आप इस हुक्म पे रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे आपके जो मसाइल हैं इस सिलसिले के हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो बातें हमने इस पढ़ी सुनी और जो अभी तक नहीं भी पढ़ सकी उस पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला ने ये अहकामात नाजिल करके हम सब पर, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया। एक सवाल आया, क्या मालिश करवा सकती है औरत के? नहीं, यानी औरत से औरत मालिश कह लीजिए या आज के दौर में मसाज है, सेम हुक्म है जो आपको पीछे वैक्स के बारे में बता दिया। आप मसाज करवा सकते हैं, आप ऐसा कोई कपड़ा अपने जिस्म पर पहन ले के जिसमें कम से कम आपका नाप से लेकर घुटनों तक का हिस्सा जो है वो कवर्ड हो। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बीमार करे ही ना। और कोई ऐसी मजबूरी, अब आप कहें कि अच्छा अगर कमर का ऑपरेशन होना हो या बच्चा पैदा होता है तो वो तो फिर एक मजबूरी की बात है ना। फिर एक यानी इनके बाप की लौंडी से बतन से पैदा हुआ, उसके मुतालिक हजरत साद बिन वक्कास को उनके भाई उतबा ने वसीयत की कि इस लड़के को अपना भतीजा समझकर इसकी सरपरस्ती करना क्योंकि वो दरअसल मेरे नुतफे से है। ये मुकदमा नबी सल्लम के पास आया तो आपने हजरत साद का दावा ये कहकर खारिज कर दिया कि बेटा उसका जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ, रहा जानी तो इसके हिस्से में कंकर और पत्थर है। लेकिन साथ ही आपने हजरत सौदा से फरमाया कि इस लड़के से पर्दा करना, अपनी बीवी को मना कर दिया क्योंकि ये इत्मीनान नहीं था कि क्या वाकई वो बच्चा इन्हीं का है या किसी और का। तो आप इस बारे में 101 सवाल भी पढ़ लेंगे तो आगे फिर एक और खुल जाएगा। इसके बारे में बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे वो अमल करवा जो बेहतरीन भी हो, आसन दर्जे का हो, और मैं उसके ऊपर अमल भी कर सकूं और फिर मेरी कमी कोताहियों को माफ कर दे। देखिए, मानने की नीयत से भी मान भी लेंगे ना फिर भी गलतियां करेंगे, कहा मानना ही नहीं। कौन आज इन सारी औरतों की तरह कहता है कि अल्लाह ठीक है मेरे लिए, रुकावट क्या है, प्रॉब्लम क्या है मेरे लिए? और आप सोचिए कि जब ये सारे इश्यू चल रहे हैं तो मैं अक्सर सोचती हूँ अल्लाह ना करे चेहरे पे हमारे कोई चीज ही ऐसी निकल आए, फिर हम मर्दों तो छोड़ दीजिए औरतों से भी चेहरे छुपाए। कई दफा चेहरे पे बाल होते हैं, कई सिस्टर्स हैं वो सिर्फ इसलिए अपने स्कार्फ नहीं उतारती कहीं के वो कहती हैं कि हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल है। अब क्या करें, मजबूरी हो गई ना, कोई ऐसी चीज है। तो मजबूरी होने से पहले इंसान अगर अपने दिल की खुशी से इस तरह के काम करता है। और एक आखिरी बात करके बस अब इस पे हम आगे चलेंगे अगले सबक पे, और वो क्या है कि हर नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। आप और मैं 18 पारे पढ़ने के बाद अगर उतने बालिग नहीं हुए जहनी तौर पर कि अल्लाह के हुक्म मान के भागे, अब इस हुक्म पे अमल करके देखिए। जब हम अल्लाह का एक हुक्म मानते हैं ना तो उसके बाद अगला हुक्म मानने को दिल करता है। तो अल्लाह ताला हमें वही समा अता दे जो कि अंसारी औरतों को थी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तुबु इलैक। और आखिरी हुक्म तुबु इलल्लाहि पे अल्लाह ताला हम सबका अमल भी करवा ले। अब चलेंगे अगले सबक पे। आज का सबक जो इसके तर्जमे लफ्जों को बहुत ही दफा मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन असल में ये हमारा सबक जो था वो 34 आयत तक ही है, लेकिन मैंने ये सोचकर कि वो मौजू छोटा है तो मैंने अगला भी सबक साथ जोड़ दिया था। सुबह जब तर्जमा आपको करवाया तो इसको समझ लें कि अब हम असल आयतें बोलेंगे, यानी बहुत सारी गलतियों के बाद अब दोबारा आप सबक बोलूंगी और पिछली सारी चीजें काट दें और इसको नोट कर लें, और जो तर्जमा रिकॉर्ड हो गया उसको हम अगले लेसन के साथ जोड़ लेंगे। मैं इन दोनों को बोल देती हूँ, यानी आज का सबक हम दोबारा बोलेंगे। सबक नंबर 179 आयत नंबर 32 से 34। सूरत नूर, लेसन नंबर 179, आयत नंबर 32-34, सूरत नूर। ब्राह रास्त आयतों पर जाने से पहले हम आज के सबक का खुलासा देखेंगे। आज कल हम सूरत नूर में वो तमाम मीन्स और जराए जिनके जरिए से किसी सोसाइटी से बेहयाई और फहाशी का खात्मा करें उसको पढ़ रहे हैं। अभी तक हम इस सिलसिले में जो चीज पढ़ चुके वो सबसे पहली चीज इस्तेज़ान थी कि किसी के घर आते वक्त इजाजत ली जाए, बेरोक टोक दूसरों के घरों में आने को खत्म किया जाए। दूसरी चीज हमने नजरों को झुकाना पड़ा कि मर्द भी अपनी नजरें झुकाएं, बेकार चीजें ना देखें, बेमकसद औरतों को भी ना देखें और इसी तरह से अपने जैसे मर्दों को भी ना देखें। फिर इसके बाद तीसरी चीज हमने इसमें जो भी देखी वो औरतों का अपनी जीनत को छुपाना था कि एक औरत जो अल्लाह पर ईमान रखती है वो जितना उसके अंदर ईमान और तकवा आता जाएगा उतना ही अपने हुसन को ना तो दूसरी औरतों के सामने खोलेगी और ना गैर महरमों के सामने। फिर इसके अंदर हमने कुछ साइड इश्यूज भी देखे जो औरतों से मुतल्लिक थे। आज के सबक में एक और सद्दे ज़राए ज़िना और वो है कि शादियों को डिले ना करो। यानी आज के पूरे सबक का जो मेन थीम है वो क्या है कि मुस्लिम सोसाइटी में कोई शख्स बेजोड़ ना रहे। लफ्ज अय्यम आया उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन यहां समझ लीजिए कुंवारे कब, जब वो बालिग हो जाए, पीपीटी की एज आ जाए, लड़का हो या लड़की, जब दोनों जिम्मेदारियों को महसूस कर सकें और साथ ही साथ है कि जब उनको इस चीज की जरूरत महसूस हो कि हमारा ये फरीजा अदा हो जाए तो उनकी उनके निकाह कर देने चाहिए। फिर दूसरी चीज वो मर्द जिनकी बीवियों का इंतकाल हो जाए या जिनकी बीवियां उनको छोड़ जाए, और तीसरे वो औरतें जिनके शोहरों का इंतकाल हो जाए या फिर जिनके शोहर उनको छोड़ दें, यानी मुतल्लिका या बेवा। और इसी तरह मर्दों में भी कह सकते हैं कि वो मर्द जिसने अपनी बीवी को तलाक दी या फिर जिसकी बीवी फौत हो गई, जिसको अपनी जुबान में ब्रांड कहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के निकाह भी कर दिए जाएं। सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि किसी सोसाइटी के मुलाजिम, गुलाम, लौंडियां और कनीजें, हर एक की ये ख्वाहिश और हाजत अगर वक्त पे पूरी कर दी जाए तो उस माशरे से बदकारी और फहाशी का बहुत हद तक खात्मा हो सकता है। हम इस पे इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे कि आज के दौर में इस चीज को किस तरह खत्म किया जाए और क्या रुकावटें हैं कि जिसकी वजह से अमूमन ये रिश्ते हम जोड़ नहीं पाते। फिर अगली चीज हम देखेंगे, बावजूद ख्वाहिश और कोशिश के फिर भी किसी को जोड़ नहीं मिलता तो वो फिर अपने आप को कैसे बचाए नफ्स के और शैतान के हाथों में तरने वाला बनने से। तीसरी चीज हम आज का सबक जो बहुत ही ज्यादा, यानी ये कहना चाहिए कि तकलीफ का टॉपिक है, वो है प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी के बारे में इस्लाम क्या कहता है और तवायफों का किसी माशरे में क्या मुकाम है और उनको उस मुकाम तक पहुंचाने वाले गिरोह के साथ क्या मामला करना चाहिए। और आखिरी चीज हम देखेंगे मुकातबत, जैसे लियान की एक इस्तलाह हमने पीछे पढ़ी थी, तो आज कैसे कोई गुलाम या लौंडी जो सारी जिंदगी लौंडी या गुलाम ना रहना चाहे तो वो एक खास फिक्स रकम तय करके थोड़ा थोड़ा करके अपने मालिक को पे कर दे और जिस दिन वो रकम पूरी हो जाए उस दिन वो आजाद हो जाए। ये है मुकातबत, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हम देखेंगे जरूरत के तहत। अब हम चलते आयतों पर। बहुत सिंपल सबक है लेकिन अगर इस पर अमल हो जाए तो किसी भी माशरे के अंदर खुशी और सुकून आ जाता है। देखते हैं तर्जमे को लेकर। औस बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आयत नंबर 32। वअनकिहुल अय्याम मिनकुम, और निकाह कर दो अपने अय्याम का। हम कहते हैं बेनिकाहे को, हमारी जुबान में इसको कुंवारा भी कह सकते हैं, रांड भी कह सकते हैं, छड़ा भी कह सकते हैं, हर जुबान के कुछ अल्फाज होते हैं ना। तो यहां मुराद है बगैर बीवी वाला शोहर और बगैर शोहर वाली बीवी, मुराद क्या है मर्द और औरत। अमूमन ये तीन किस्म के होंगे। नंबर एक वो लड़के और लड़कियां जिनकी अभी शादियां ही नहीं हुई, कुंवारे के मानों में पीबीटी की एज है, शादी की उम्र है। दूसरी इसका इत्तलाक होगा वो मर्द जिनकी बीवियां शादी हुई थी लेकिन अब आज उनके पास नहीं है, और इसी तरह वो बीवियां जिनके शोहर आज उनके पास नहीं, जिसको आप कह सकते हैं कि शोहर दीदा और बीवी दीदा। दीदा कहते हैं देखने को, यानी एक तो वो है ना कि जिसने अभी देखा ही नहीं है, जिसने इसको टेस्ट नहीं किया वो तो है ही, उसकी तो जरूरत है। और उसको तो बहुत सारे लोग महसूस भी करते हैं हमारे कल्चर में भी, लेकिन यहाँ बात हो रही है बेवा के निकाहे सानी में, और वो बूढ़े जो हो सकते हैं 50 साल से ऊपर के हों, 60 के हों, ऐसी उम्र की हद जिस वक्त अमूमन हमारे यहाँ फिर कोई शादी करने लग जाए तो लोग कहते हैं इनको बुढ़ापे में क्या सूझी, अल्लाह हमें कहते हैं वान के हुलैया मा, तुम निकाह कर दो किनके, अय्यामा बेवा औरतों के। अब देखो यह देखिए कल यहाँ लफ्ज है निकाह करवाओ तुम करो, तो यहाँ अय्यामा को फिर औरतों में लिया जाएगा, मिनकुम तुम में से, मतलब बेवा औरतों के निकाह कर दो तुम में से जो है, एक एक चीज होगी, कैसे है इसको देख लेंगे। दूसरा किसका निकाह कर दो, वो सालेहीन मिन इबादिकुम, अपने नेक गुलामों के। पीछे भी बात हो गई गुलामी उस दौर में आम थी, घर घर में गुलाम होते थे क्योंकि जंगें बहुत थी, लड़ाइयों के बाद जंग लोग कैदी बन के गुलामों या लोंडियों की सूरत में आते थे। इस्लाम ने ऐसे मैयर्स लिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में गुलामी का वजूद नहीं है, लेकिन ये किसी वक्त दोबारा शुरू हो सकता है, किसी बड़ी जंग के नतीजे में दुश्मन से बच के आने वाले लोग जो है वो इस इस्तिलाह में आते हैं, तो इनके भी निकाह कर दो क्योंकि उनके भी जज्बात हैं। पीछे आपको याद है सूरत के आगाज में आपको बताया था कि पांच शरीयत के पांच मकासद शरीय है, जिसमें एक इंसान के जज्बात की हिफाजत भी है, तो लिहाजा बगैर वजह के किसी मर्द को शादी के बगैर न रखो। और तीसरी इस्तिलाह व इमाइकुम, इमाइकुम आमतुन की जमा है, और आमा कहते हैं लौंडी को, नाम भी है बड़ा खूबसूरत आमतुल्लाह, अल्लाह की लौंडी। वो दुआ भी है ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक, तो उसमें क्या आता है वब्नु अमतिक, अमाती मेरी माँ भी अल्लाह तेरी कनीज थी या बंदी थी, तो लिहाजा यहाँ मुराद है लौंडियां। पीछे हमने लौंडियों के बारे में बात की पांचवें पारे के आगाज में, और सूरत मोमिनून के पहले रकू में थोड़ी सी बात की थी कि लौंडी के साथ ताल्लुक रखने के मुख्तलिफ दर्जे होते थे। कुछ लोग तो अपनी लौंडी के साथ खुद ही अपना जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेते थे, और कुछ जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करते थे, उनको भी कहीं नहीं जाने देते थे। कुछ ऐसे थे कि जो खुद तो नहीं लेकिन किसी और के गुलाम के साथ या किसी आजाद शख्स के साथ उसका निकाह कर देते थे। तो गोया कि अल्लाह ताला ने यहाँ इंसानों के सिन्फी जज्बात, उसके इमोशंस की बात की कि इनके निकाह कर दो। अब निकाह करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रुकावट क्या है, अमूमन लोगों के हाथ में आज भी वही है जो कल भी थी कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बेटा पढ़ रहा है, अभी बेटी पढ़ रही है, और अभी घर नहीं है, अभी गाड़ी नहीं, कोठी नहीं है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इन यकून फुकरा, अगर वो तंगदस्त हैं भी, फकीर हैं, लड़के अभी जॉब पे नहीं लगे, काम धंधा नहीं है उनके पास, तो क्या हुआ, युग्निहिमुल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह बेनियाज कर देगा उनको अपने फजल से। यानी ये ना फिक्र करो कि लड़के के पास तो मेहर देने के भी पैसे नहीं है, लड़की को खिलाएगा कहाँ, रखेगा किधर, निकाह कर दो, अल्लाह ताला अपनी रहमत से रिस्क बढ़ा देगा। अभी ठहर जाए, आयत पूरी कर लूँ। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत वुसअत वाला और बहुत जानने वाला है। अब आप इस एक आयत को देखिए तो सबसे पहला अगर इसमें हुक्म अय्यम को हम बेवा की सूरत में ले लीजिए, तो ये वो हुक्म है जिसके ऊपर आज हमारे माशरे में अमल क्यों नहीं होता, हिंदुआना रस्म और रिवाज के जेर असर होने की वजह से, कि एक औरत जिसका शौहर मर जाए, हिंदू कल्चर में अमूमन ऐसी औरत को सती कर दिया जाता है, क्योंकि बाद में जो उसको ताने मिलते हैं, जो दूसरों के ऊपर उस दूसरों के सामने उसकी इंसल्ट होती है, तो रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक औरत एक ही दिन में मर जाए। इसी से मुसलमानों में भी ये चीज आ गई कि बेवा औरत के साथ निकाह नहीं करना, और साथ ही साथ फिर ये भी हो जाता है कि वो शायद मनहूस है, अगर इनके नसीब में खुशी होती तो पहले ही क्यों मरता, दिस एंड दैट। ऐसे लोग सिर्फ अपना सर फोड़ते हैं, और तकदीर पर नाराजी रहने वालों का यही नसीब है कि वो जलते कुड़ते हुए ही दुनिया से चले जाएं। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको यहाँ निकाह की रग़बत दिलाते हैं। देखिए अगर आप देखें कि यहाँ खिताब किससे, अन के हु में चूंकि हुक्म है ना तुम करो, तो पहली बात है कि कमारे लोगों के औलिया से, माँ बाप कह लीजिए या वली जो होते हैं, और दूसरी बात है सारे ही लोगों से। इस्लाम में निकाह की क्या हैसियत है, इस पे इंशाल्लाह अब जहां भी मौका मिला अगर हम किताबो निकाह बुक अपनी शुरू कर सके तभी मुसन्ना की सीरीज की, तो वो करेंगे, जिसमें निकाह ए टू जी है। वैसे उसको काफी हद तक निकाह ए टू जी में हमने पढ़ भी लिया था, लेकिन इस्लाम में निकाह इबादत है, आज माशरे ने इसको इस रंग का पेश किया कि जैसे शायद ये सिर्फ जज्बाती तस्कीन का नाम है और इसको सिर्फ जिंसी जरूरत और जिस्मानी जरूरत समझा जाता है, हालांकि निकाह इंसान की जहनी जरूरत भी है, जिस्मानी जरूरत भी है, माशरती जरूरत भी है। एक अकेला 2-11 ये बिल्कुल टर्म फिट होती है शादीशुदा और गैर शादीशुदा पे। एक लड़की जब अपनी पीपीटी के पास पहुंचती है तो ना चाहते हुए भी उसके और उसके घर वालों और फिर बाद में दूसरे लोगों के जहनों में आ जाता है कि अब इसको इसके साथ होना चाहिए, इसके साथ इसका कोई जोड़ा होना चाहिए। यही हालात लड़कों के होते हैं। तो लिहाजा इस्लाम कहता है कि जब किसी चीज की तलब हो तो तुम उसको आसान कर दो, उसमें मुश्किल ना करो। ये वो चीज है कि जिसको जितना आसान करोगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। निकाह फर्ज भी है, मसनून भी है और हराम भी है। आप कहेंगे ये कैसे? फर्ज कब है? जब जरूरत महसूस हो और माँ बाप ना करे, लड़का या लड़की किसी वजह से, और वो लड़का या लड़की किसी गुनाह में पड़ जाए, बदकारी हो, बेहयाई हो। इस पर रिवायात मौजूद है कि जिसकी बच्ची 12 साल की हो गई और उसने निकाह ना किया और वो किसी बुराई में पड़ गई तो गुनाह माँ बाप को होगा। ये बाइबल के नाते से बात मौजूद है कि कुरान हदीस में आती है बात। तो फर्ज कब है? कि बदकारी में पड़ने का अंदेशा हो। मसनून कब है? आम हालात में रिकमेंडेड है। वेरी गुड। नफ्स, हर नबी ने निकाह किया सिवाय हजरत अली, हजरत ईसा अलैहि सलाम के। लेकिन रिवायत में आता है कि अब दोबारा जब वो दुनिया में आएंगे तो इंशाल्लाह वो निकाह करेंगे, अपनी तबई जिंदगी जिएंगे और उसके बाद उनका इंतकाल होगा। ठीक है। हराम कब है? जब पता चल जाए माँ बाप को दोनों में से किसी के भी कि हमारा लड़का शादी के काबिल नहीं है या हमारी लड़की में कोई ऐसा नक्स है, तो फिर इस बात को छुपा कर उसका निकाह कर दिया जाए तो ये हराम है। जाहरी बात है कि जो मकसद था वो तो पूरा ना हुआ। कितने दिन के लिए ये चलेगा निकाह? 1 हफ्ते 10 दिन में बात खुल जाएगी, पता चल जाएगा, इसलिए इसको पसंद नहीं किया गया। इस्लाम के अंदर इन सारी चीजों को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत पेश किया। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत जो हमारे यहाँ पहले शादी के कार्ड्स पे लिखी जाती थी अमूमन, क्या निकाह हो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। एक और रिवायत में आता है हजरत अली से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 कामों में देर ना करना। नंबर 1, फर्ज नमाज के अदा करने में जबकि वक्त शुरू हो जाए। दूसरी, जब कोई फौत हो जाए तो उसके जनाजा उठाने और कफन दफन में। और तीसरा, जब कोई बच्चा बच्ची जवान हो जाए तो उनके, सॉरी, जब किसी का कोई साथी चला जाए तो उसके निकाह सानी में। इसी तरह से एक रिवायत में आता है कि 3 लोगों की मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। नंबर 1, आप निकाह करने वाला जो अपने आप को जिना से बचाना चाहे, फिर मुकातबत करने वाला गुलाम जो अदायगी की नियत करे, जो आज के सबक के आखिर में बात होगी, और तीसरा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। दुआ करें अल्लाह में मुजाहिद की सबीलिल्लाह बना ले, हम दुनिया से अंधेरों को दूर करने वाले बन जाएं और इस तरह रोशनी फैल जाए घरों में हमारी वजह से, और इस रास्ते में फिर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। इसी तरह नबी सल्लम की एक और रिवायत है, आपने वलियों को मुखातिब किया और फरमाया कि जब तुम्हारे पास रिश्ता आ जाए जिसके दीन और खुलुक को तुम पसंद करो तो वहां निकाह कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तो वहां दुनिया में फसादुन कबीर होगा। ये सारी रिवायतें आप निकाह किताबु निकाह जो इकबाल केलानी साहब की किताब है उसमें से खुद भी पूरी नोट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के मसाइल, सॉरी, निकाह ए टू जेड जो सेमिनार था उसके बिल्कुल शुरू के सेशन में ये सारी रिवायतें आपको ऑडियो फॉर्म में भी मिल जाएंगी। फिर इसी तरह से मुसनद अहमद की एक रिवायत है, काब से पूछा गया क्या तुम्हारी बीवी है? कहा नहीं। कहा बांधी है? कहा वो भी नहीं है। तो फरमाया कि फराख माल हो, यानी यू कैन अफोर्ड? कहा हाँ। फरमाया फिर भी अगर तुम शादी नहीं करते तो तुम शैतान के भाई हो। मतलब क्या है कि फितने में खुद को डाल रहे हो। फिर जाहिर है कि जरूरत है तो फिर वो हलाल से तो नहीं, हराम से पूरी होगी। निकाह होता क्या? मर्द और औरत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो औरत के वली और शौहर के बीच में बनता है, यानी बाप कह लीजिए ये वली और उधर से लड़का। हम कहते हैं ना लड़के और लड़की का निकाह है, नहीं, निकाह होता है लड़की के बाप और लड़के के बीच में, जिसकी वजह से फिर बाप अपनी बेटी उसको देता है। क्योंकि आपने अक्सर अपने कल्चर में देखा होगा फलां की बेटी से इतने हक मेहर के बस, क्या तुम्हें निकाह मंजूर है? तो बाप बीच में होता है। हदीस में आता है जो लड़की अपना निकाह खुद कर ले तो वो जिना है। ला निकाहुन इल्ला बी वलीजुन। पीछे हम पांचवें पारे के पहले लेसन में हम बहुत तफसील से इस पे बात कर चुके थे। तो ये सब कुछ करना इंसान के लिए जरूरी है। मकासिद क्या है निकाह के, ये सिर्फ दोहराई करा रही हूं, वरना वो सबक आप दोबारा भी सुन सकते हैं अपना। पहली बात है हराम से बचाना खुद को, निगाह की हिफाजत करवाना और शर्मगाह की हिफाजत करना, फितरी जज्बात की तस्कीन करवाना, फिर इसी तरह से नस्ल पैदा करना। इस्लाम में बगैर शादी के बच्चे का तसव्वुर नहीं है। ये मिथ तो हो सकती है कोई वेस्टर्न स्टाइल की, लेकिन मुसलमानों के बच्चे शादी से बगैर नहीं होते। आज आप देख लीजिए, जब लोग एक दूसरे को अपने आप को दीन के नाम पे मजबूर समझते हैं, तो आज इस चीज को भी रख लिया। फिर इसी तरह से मवद्दत और रहमत, दिन ब दिन इंसान कमजोर होता है और इंसान एक जिंदा चीज है, कभी सेहतमंद कभी बीमार, कभी खुश कभी परेशान। एक दूसरे के फितरी जज्बात के साथ साथ दोस्ती, मोहब्बत, तन्हाई खत्म हो। फिर इस निकाह के मकासिद में ये भी है कि इस सोसाइटी में एक नया घराना वजूद में आए, एक नई फैमिली जहां आइंदा नस्ल की तरबियत का इंतजाम हो, अमान कायम हो, दीन की हिफाजत हो। अमूमन शादियों के बीच में रुकावटें क्या हैं आप पता? सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पेरेंट्स फी समाना, ये एक मैंने पिछली क्लासेस में भी कहीं कोट करवाया था। अमेरिका में कुछ ब्रदर्स हैं जिन्होंने ये सारे फिगर्स जमा कराए थे कि अमूमन जवान होने के बावजूद लड़के और लड़कियों की शादियां क्यों नहीं होती। तो उसमें एक इशू एजुकेशन था, पढ़ रहे हैं, फिर जॉब था, लड़के को जॉब नहीं मिली। फिर तीसरा जी ये है कि वो बाहर गए हैं, वो भी वीजा नहीं लगा, डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसमें एक बहुत बड़ी वजह माँ बाप थे, क्या पहले रिश्तों को पसंद कोई नहीं आता, और जब पसंद आते हैं तो रस्मों के बीच में, अब दहेज जमा हो जाए, अब ये जिम्मेदारी पूरी हो, लड़के का घर बन जाए, उसकी गाड़ी हो जाए। इतनी शरायत बांधने वालों की भी बच्चियां उतनी खुश नहीं रहती जितनी भोले भा पहले दौर में जो लोग दीनदारी के नाम पे निकाह करते थे और उनकी बच्चियां खुश रहती थी। तो लिहाजा निकाह को आसान होना चाहिए। हदीस में आता है कि वो औरत अपने मर्द के लिए बहुत बाबरकत है जिसका हसूल आसान हो। अभी लास्ट वीकेंड हम एक शादी पे वलीमे पे मधु थे, तो बाद में छोटा सा एक दर्स हुआ और फिर कुछ लोग अपनी शेयरिंग कर रहे थे। तो उसमें से एक कोई यंग ब्रदर थे जो दोस्त थे शायद लड़के के, तो उसने बकायदा ये बात माइक पे कही कि मैं आज के मौके को बुनियाद बनाकर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों की शादियों को आसान करें। कई मर्द हैं और कई लड़कियां जो शादी करना चाहती हैं और उनको क्या लगे, उनको तो शादी चाहिए। ये ऊपर के सारे जो चौंचले ना, ये माँ बाप के होते हैं, कभी इज्जत के नाम पे, कभी लंबे चौड़े खाने, अब हॉल नहीं बुक हो रहे, ये नहीं हो रहे, और आप देख सकते हैं कि वो कहाँ तक ले जाया जाता है। तो लिहाजा इस सारी चीजों को सामने रखते हुए शादी को आसान कर देना चाहिए। अब होता क्या है कि शादी जब हो जाती है उससे पहले गुर्बत है। अल्लाह ताला ने ये जो बात कही ना कि युग्निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, ये क्या है जरा इसको भी समझ लीजिए। बारिश होती हुई देखी होगी, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना, जैसे बारिश की जो फुहार है एक जगह थोड़ी सी पड़ी, फिर थोड़ी दूर आगे जाके पड़ी, अब वो दोनों बदलियों को एक जगह जमा कर दें तो वो दोनों की बारिश एक जमीन के टुकड़े पे पड़ेगी तो ज्यादा होगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में जिसको भी पैदा किया साथ ही साथ उसका नसीब भी पैदा किया। हर बच्चा रिस्क लेकर आता है, दो हाथ होते हैं, उसके दिमाग होता है। अब एक लड़की है, वो अपने माँ बाप के घर में थी, उसका नसीब उधर था, लड़का जो है उसका नसीब उधर था। अब वो दोनों जब एक छत के नीचे हो गए तो डबल हो गया ना नसीब। तारीख गवाह है कि शादी हुई गुर्बत थी और उसके 2-4 साल के बाद वही मर्द शहर के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। आप करोड़पति को भी रिश्ता देंगे ना, अगर आपके नसीब में नहीं है तो साल 2 साल में वो बच्ची हैंड टू मौत होगी। ऐसी मिसालें अगर आप नाम लेना चाहें तो 20 मिसालें आपको दी जा सकती हैं, करोड़पति लोग। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि घर में एक वक्त का खाना नहीं, ये रियलिटी है, आप सब जी जानते होंगे। हम सब इसी दुनिया पे रहते हैं, दुनिया में रहते हैं कि तिल कल अय्याम नुदा विलुहा बैन अन्नास। और इसको अपोजिट भी है, सीधे साधे मेहनती लड़के को माँ बाप रिश्ता दे देते थे जो बिल्कुल दीन के इब्तदाई अपनी जिंदगी के कैरियर के आगाज में होता है। अब कुछ सालों में मेहनत की ऑनेस्टी थी, वो अपने ससुर से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। खराबी पता कहाँ पैदा होती है, जहां हम ये चाहते हैं कि शादी जिस लड़के से करें उम्र तो उसकी थोड़ी हो, बड़ा मासूम सा बच्चा हो, लड़कियां भी ये कहती हैं कि अगर मैं 20 की हूं तो वो 21 का हो, 22 का, दैट्स इट। और उस मर्द की स्टेट हैसियत और उसकी दौलत को तकाबुल करते हैं अपने बाप के साथ। मेरे अब्बू के पास क्या है? भाई आपके अब्बू अब अपने कैरियर के अख्ताम पे है, आपका होने वाला शोहर अपने दी आगाज पे। फर्क होता कि नहीं होता? आप में से किसी का अगर एक्सपीरियंस हो जो डॉक्टर्स की बीवी है, खासतौर पे ये एक प्रोफेशन ऐसा आता है कि दुनिया शुरू में इतना हालात खराब होते हैं। हमारी एक बड़ी प्यारी साथी है कहीं जहाँ पहले क्लासेस होती थी, यानी कह सकते हैं कि शहर के अमीर तरीन लोगों में वो शामिल होते हैं जहाँ वो रहती थी और जो भी है, और उनके शौहर जो है वो पूरे डॉक्टरों के जो कंपार्टमेंट है उसके बड़े थे। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कम होंगे, और हर चीज में दीन में वो कामों में आगे होते थे। लेकिन वो जब बैठती थी तो सुनाती थी कि जब मेरी शादी हुई, स्टिल शोहर दीन मतलब डॉक्टर थे पर हाउस जॉब थी, फिर वो कहाँ कहाँ उन्होंने धक्के खाए। वो यकीन करे सुनाती थी कि इतने थोड़े पैसे मेरे शोहर को हाउस जॉब के दौरान मिलते थे कि जोड़ जोड़ के जमा करते थे, कि जब पहली बच्ची कहती है पैदा हुई तो फिक्र बढ़ गई कि इसका दूध पानी कहाँ से आएगा। तो हम हैरान होते थे कि ये तुम कह रही हो, लेकिन ऐसा हुआ। वो वक्त नहीं रहा, वक्त के साथ बदलता है, क्योंकि कारोबार में और जॉब में बहुत बड़ा फर्क होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है? आप किसी करोड़पति के साथ शादी कर दें, नजर पाक नहीं है, दिल पाक नहीं है, जुबान का गंदा है, मिजाज का तेज है, आपसे ज्यादा उसको दूसरी चीजों में दिलचस्पी है, क्या आप दौलत के साथ सो सकती हैं? मोटे मोटे आंसू होते हैं उन औरतों की आंखों में, इतनी मोटी मोटी चूड़ियां और बुंदे और हार और उंगलियों में अंगूठियां होती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हम रो के सोते हैं क्योंकि हमारा शौहर हमारी तवज्जो नहीं देता। तो मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अक्सर माँ बाप अपनी बेटियों के रिश्ते क्यों नहीं कर पाते? क्या ये ऐसा हो सकता है कि कभी कोई रिश्ता आया ही नहीं? आप बैठ के सोचें, देखिए कि जब माँ बाप भी खूब से खूब तर की तलाश में जाते हैं ना, तो फिर वक्त गुजर जाता है बाजू का। क्या बेटी के रिश्ते नहीं आते? मेरा ख्याल है वो कहते हैं जिस घर में बेरी हो वहां पत्थर आते हैं, और जहां लड़की हो वहां रिश्ते आते हैं। अपना मियार हल्का रखें। अमूमन शुरू में तो लोगों को इतना मान होता है, हमने इतना पढ़ाया है, हमारी बच्ची इतनी खूबसूरत है, हमारी अकेली बच्ची है, वो हर रिश्ते को यूं तू तू करके पीछे कर देते हैं। और इसी तरह लड़के की माएं कहती हैं अभी तो इसको पढ़ाना है। अब आप सोचिए, मिसाल देती हूँ आपको, सिर्फ एक फी जमाना बात है। जैसे अमूमन आज के दौर में जब लड़के अपनी तालीम से फारिग होकर जॉब पे लगते हैं ना, तो 25 से 27 साल की उनकी उम्र हो चुकी होती है, राइट और रॉन्ग। 27 साल का एक लड़का, आज का ये मुआशरा जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, लड़का सच बताएं बालिग कब हो जाता है? एक तो ना उसको बातें पता लग गई, वो तो आपकी सेक्स एजुकेशन नहीं दे दी 7-8 साल की उम्र में, 14 से 15 साल की उम्र में 100% वो शादी के लिए तैयार है। और अल्लाह ना करे अगर खराब माहौल है तो गर्ल फ्रेंडशिप तो इससे पहले की भी होगी। 27 साल तक, चले हम मुहतात अंदाजा लगा लें, 17 से उसको यंग करें, 27, 10 साल आपके बेटे ने किस तकलीफ में गुजारे। और वो जज्बे जो कच्चे कच्चे जज्बे होते हैं जो शुरू में आते हैं, ठीक होते हैं। पहले दौर में क्या, लड़का 18 साल का, लड़की 16 की है। अच्छा जी, रहते क्या? अब्बा किधर है जी? अब्बा के साथ दुकान पे बैठता है। लड़की की शादी हो गई, अब्बा जी को गुस्सा आ गया, उसने शादी शुदा बेटे को भी लगा दी, और हर महीने उसे अब्बा जी पैसे तो दे दें, अब्बा जी जेब तो दे दें खर्च। अब होता क्या था, छोटी उम्र में जब शादियां होती थी ना, तो लड़की देखती थी अपने शौहर को अपने सुसर से डांट खाता, तो लड़की किसके, वो लड़की के दिल में किसकी बड़ाई होगी? सुसर की होगी। पहले लड़कियां क्यों जुड़ जाती थी ससुराल के अंदर, सास की भी खिदमत, सुसर की, क्योंकि उनको पता हर महीने अब्बा जी से पैसे आने, तो मेरे भैया ने मुझे कुछ पॉकेट मनी देना। ला मुहाला बच्चियां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में खुश रहती थी। और अगर किसी लड़के ने या शौहर ने बीवी के साथ जरा ऊंची बात कर दी, तो लड़की जो है वो ससुराल की खिदमत करके उनके दिल में जा चुकी होती थी, तो वो कहते थे खबरदार इसको हाथ लगाए तो तुम्हें भी निकाल दूंगा घर से, इसको रख लूंगा। कितना सिक्योर फीलिंग आती है। आज देखिए, अमूमन आप अगर बेटी के बाप है, मैंने इस पे छोटे छोटे वो दिए हुए सेशन, उसका एक टॉपिक ही मुझे याद आ गया कि अगर आपकी बेटी का रिश्ता है, इसी तरह एक छोटा सा सेशन था किसी मौके पे कि अगर आप बेटी के बाप है, इस तरह बाप बेटे के, तो वो छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं, अपने ऊपर लेके सोचे कि अगर आप बेटी के बाप हैं या बाप नहीं है, तो ऑफकोर्स बाप तो माँ ही है जो सुन रही है, आप ये बताइए कि जब आप के लिए आपके जहन में आता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कहाँ करूं, तो हम क्या कहते हैं कि लड़का अपने कदमों पे खड़ा हो। कदमों में तो वो गरीब अल्लाह का बंदा 1.5 साल का खड़ा हो गया था। अक्सर माए कहती है अभी अपने कदमों पे नहीं खड़ा हुआ, आप खड़े करके देखे, यमीन भी कदमों पे खड़ा हुआ है, वो तो खड़े नहीं होगा, वो तो भाग जाता है। ये बड़ा अजीब सा मामला है हमारे यहाँ। अब जब एक लड़का 100% मेच्योर है, देखिए 17 साल और 27 साल के बीच में क्या उसकी सोच नहीं पुख्ता हुई, उसके आइडियल नहीं पुख्ता हो गए, उसकी ये कैसे हो सकता है कि पढ़ने के दौरान भी उसको कोई अच्छी लड़की ना लगी हो, फिर जॉब के दौरान, हाउस जॉब के दौरान, फिर जहाँ काम, 4-5 लड़कियां यकीन करें उसके दिल में आई होंगी, ये अलग बात है शराफत की वजह से उसने बात नहीं बढ़ाई। आपकी बेटी जो उसके घर आ रही है ना, वो छठी लड़की होगी जो उसकी सोचों में आई। मैं नहीं कहती उसका किरदार खराब है, मुश्किल क्या पड़ी, आपने 10 साल में पहले उस गरीब को आइडियलाइज कर करवा के थोड़ा, फिर आप बेटी देते हैं। सिंपल तरीके से शादियां करते हैं, रात जाते जो रिश्ते हो जाते हैं ना, यकीन करें उसमें बड़ी बरकत है, और जो पुंजिन करते हैं ना, अल्लाह ना करे। सल्लम के पास एक मौके पे एक शख्स आए, जलबीब उनका नाम आता है, कभी जलबीब है, और थोड़े से प्रोनाउंसिएशन से हदीसों में फर्क है, काले रंग के थे, हबशी परदेसी थे, मदीना के नेटिव नहीं थे, और दौलत भी कोई नहीं और गुलाम भी थे। सिंपल उस दौर की खूबसूरती देखिए, मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी से नमाज के लिए नहीं जाते थे फटाफट और भाग के नहीं आते थे, बाद में बैठते थे। के थोड़ी बहुत वरोप डालने के लिए चीख चूख लेते हैं, लेकिन अंदर से वो चाहते यही थे कि आपसे शादी हो, क्योंकि आप ही बर्दाश्त कर सकती हैं ऐसे मर्द को। हर मर्द अंदर से मेरा हले खुश ही होता है, और शुरू में 9-5-6 साल बाद हो जाता है, कोई 10 साल बाद खुश होता है। अब शायद हमने फिक्शन में क्या देखा, पूरी फिल्म स्टोरी किस पे चलती है, लव या रोमांस बिफोर मैरिज। और अक्सर शादियां कहाँ खत्म होती हैं, अक्सर फिल्में कहाँ खत्म होती हैं, या शादी हो गई, नहीं, अब बस शादी होगी, यानी अब खत्म। वो कहते हैं ना कि वेड लॉक इज डेड लॉक, बस शादी हुई मर जाओ खत्म, या फिर शादी नहीं हुई तो वो कहते हैं अच्छा साथ जिए नहीं तो साथ मरेंगे, उधर गिरा पड़ा खुदकुशी करके, उधर दोनों की रूहें निकली ऊपर, दोनों मिली दिल बन गया, कहते हैं या नहीं तो आगे मिलेंगे, जी नहीं आप खुदकुशी करते रहेंगे, रोज यही काम करते हुए आप बरजख में रहेंगे। क्या सोसाइटी है हमारी, इस्लाम कहता है नहीं आसान रखो। खैर जब माँ बाप ने सुना कि ये बच्चा है, और अब देखें तो क्या देखें, जिसको हम अपनी जुबान में कह सकते हैं कि बात है भी तो क्या, ना दौलत ना शक्ल ना कोई खानदान ना बिरादरी, करीब था कि माँ बाप इनकार कर दें, लेकिन बच्ची अंदर सुन रही थी, और वो बच्चियां भी मेरा ख्याल है कि उनके मेयार अच्छे थे। फिर उसने कहा कि आप ये कहते हैं कि ये कुरैशी नहीं है, तो ये तो देखें कि जिसने इसको भेजा वो कितना वो कुरैशी है, कि देखिए रिश्ता भेजा किसने आपके घर, और अगर ये खूबसूरत नहीं है तो जिन्होंने भेजा है वो तो बदरे मुनीर है, इनके पास दौलत नहीं है तो जिसने मेरा रिश्ता भेजा है वो दौलतमंद इंसान है, दुनिया की बादशाही उनके पास है, आप मेरा निकाह इधर कर दे मैं तैयार हूँ। अच्छा बाद में मैं तो नहीं कहूंगी, नहीं नहीं कहूंगी, निकाह हो गया, अल्लाह के हुक्म से वो निकाह होता है, जलबीब ने मदीना में रहना शुरू कर दिया, कहते हैं कि उसने कोई काम शुरू किया और अल्लाह ने इतनी उसमें बरकत दी, 1 साल के अंदर अंदर मदीना के जिसको आज की जुबान में और बीवी में क्या रंग से कोई मोहब्बत होती है, शक्ल से होती है, फीचर से होती है, ये मोटी आंखें पलके ये सिर्फ शादी से पहले की बातें हैं, और फिल्मों और ड्रामों में इतनी मोहब्बत थी कि क्यूपिड कपल के नाम से मशहूर हो गया वो जोड़ा, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत डालता है। ये दुआ करें कि अल्लाह ने आपकी बेटियों के लिए खैर लिखी हो, और जब आप अपनी बेटियों को हया के जेवर और खिदमत गारी और आजजी और स्माइली और अच्छी फिगर्स दे के भेजते हैं, बड़े से बड़े कठोर के साथ भी वास्ता पड़ जाए, थोड़े से मुजाहदे के बाद दिल ठीक हो जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं पनपना चाहिए। और इसका ऑपोजिट देख लें, अगर आप लड़के की माए माशाल्लाह, वो परी कहां से लाऊं जिसे तेरी दुल्हन बनाऊं, अल्लाह कहता है मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, तुम्हारे लिए मैंने मर्द तक औरत मिलेगी, हम पहले ही खलत हम कहते हैं नहीं परी चाहिए, परियां देखी हैं कभी आपने? तेरी दुल्हन देखो ढूंढू, फिर फिल्में, फिर गाने, फिर भाभी देवर के लिए ढूंढती है। हमने यही कहानियों में खो खो कर जिंदगियां जाया कर दी। आज आपको तुम्हारे कल्चर का मेरा ख्याल है कि मोर देन 50% वक्त सिर्फ ये धुल्ले रिश्ते ढूंढने, या पहला फेरा, अब जोड़ा देना, अब मंगनी आ गई, बरात आ गई, ये करो, अब शादी के जोड़े, अब डेट डालो, अब तारीख डालो, आप सब भी तो इन चीजों से वाकिफ होंगे ना। शादी तो अभी बहुत दूर है, अभी तो उसके पिछले सगन नहीं पूरे हो रहे, पहले ही माँ बाप की जेब खाली हो जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आसान काम करो। वल्लाहु, देखिए अल्लाह की सिफत, ये गरीब है, अल्लाह तो वसी है, वसतों वाला है, अल्लाह ने उसके लिए रखा है। और आप अपने 20, 25, 30 साल जिसकी जितनी भी देर गुजरी है शादी को, उसको सोचें, क्या आपके शौहर और आपकी जिंदगी एक ही नहज में चली? कितने अप्स एंड डाउन नहीं आए? कभी आपके शौहर माशाल्लाह करोड़पति थे, फिर एक ऐसा बीच में प्रॉब्लम आ गया, 4-5 साल कारोबार चला गया, हो सकता है कर्जों में चले गए, अल्लाह ने फिर सुन ली। ये जिग जैग चलती रहती है, ये ग्राफ है, लेकिन असल चीज जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और मैं कहूंगी कि जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए रिश्ते करते वक्त दोनों साइड से, उस पे आज हम गौर भी नहीं करते, और वो है दीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 बातों की वजह से अमूमन किसी औरत से निकाह किया जाता है। 4 बातें भी आती हैं, 5 भी आती हैं। नंबर 1, ली जमालिहा, खूबसूरती, ब्यूटी। ली मालिहा, ब्यूटी के साथ साथ माल भी है। हसबी हाँ, उसका हसब अच्छा है, उसका नसब अच्छा है। और ली दीन ही हाँ, उसका दीन अच्छा है। फरमाया कि तू दीन वाली के साथ कामयाब हो जा। अब आपको मैं सारी बात को इकट्ठा कर दू, सम अप कर लेते हैं सारे मामले को। कोई माँ बाप ये नहीं है जो ये चाहे कि हमारी बेटी जो है वो जहां जाए वो जूतियां पटखें, खाए ना पिए ना फाके हो, कोई नहीं चाहता। ना बेटी के लिए आप चाहते हैं ना बेटे के लिए, और ये नेचुरल है। पूरी दुआ करें, जितनी आप पूंजीन करें ना उतनी दुआएं दें अपने बच्चों को। आप को चारों पांचों चीजें मिल जाती हैं, सोने पे सुहागा, अच्छी खूबसूरत भी लड़की है, खानदानी भी है, दौलत भी अच्छी है उसकी, दीन भी है, तो ये तो नूर होना ला नूर, इट्स ओके। ये भी नहीं कह सकते कि अब लेनी नहीं है ऐसी चीजें क्योंकि ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमें तो सिर्फ दीन चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं। लेकिन आज बैठ के एक चीज को प्रायोरिटाइज करें, पांचों में से छोड़ना पड़े तो क्या छोड़ सकती हूँ? खूबसूरती, इट्स ओके, सारी खूबसूरत हो जाते हैं बाद में, कोई बड़ी बात नहीं। माल नसीब की बात है, खानदानी, जो मेरे खानदान में जुड़ गया वो मेरा खानदान हो गया। हाँ, दीन, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप देखें रिश्ते लोग करते हैं, पूछे लड़का नमाज पढ़ता, ये तुमने पूछा ही नहीं, भी पूछ लेते, नहीं फिर बदमजगी पड़ती है, नहीं फिर लोग माइंड करते हैं। अच्छा ये कि लड़का काम क्या करता है, ये हमने नहीं पूछा, भी जॉब क्या उसकी, नहीं ये नहीं पूछते। अच्छा ये बताएं कि उनका अकीदा ठीक है, कोई उनके कब शिरक तो नहीं, नहीं ये तो नहीं, ठीक हो जाएगा, लड़की ठीक कर रही, वो समझे मेरी लड़की बड़ी बहादुर है, बिगड़े हुए 10, 20, 50, 15 साल के लड़के को हमारी लड़की देखना है कुछ दिनों में यूं ठीक कर लेगी, और वो लड़कियों को भुगतना पड़ता है। अक्सर मैंने देखा है माँ बाप के गलत फैसले भुगतती लड़कियां, और अच्छी बच्ची के माँ बाप को कभी नहीं बताती कि आपने हमारा कहाँ कर दिया, वो खुद ही अल्लाह से पूछती है, अल्लाह अब क्या करूं करता है। लेकिन कभी जैसे पीछे पढ़ चुके, अल खबीस आतुल खबीस हो और अतयबातुल तय्यिबुन, तो रिश्ता देखते वक्त दीन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। जितना ज्यादा आप इस पे देखेंगे उतना फायदा होगा। एक और बात इस सिलसिले में हमारे कानों में पड़ती है लोगों की तरफ से, और वो क्या, वो कहते जी हमने तो दीन देख के दिया था, वो तो धोखेबाज निकले। भाई क्या दीन देखा था आपने? वो उनके अब्बा जो है ना वो मस्जिद में बहुत खिदमत करते हैं, तो हमने वो मस्जिद के नमाजी के बेटे से शादी कर दी। भाई उस बेटे को भी कभी आपने देखा था मस्जिद में? नहीं, अब्बा जो इतने हाजी साहब का बेटा है, वो मेरी दर्स वाली बहन है, उसकी बेटी से शादी कर दी। ये गलती कभी ना करें, ये बेसिक रूल्स बना लें, माँ बाप को देखकर कभी निकाह ना करें, रिश्ते ना करें। पहले वो प्रोडक्ट देखें कि ये लिया क्या आपने, सब चीजों को निकाल दें, किसका बेटा, किसकी बेटी, किसने कहा, किधर कहा, सिर्फ ये देखें जो चीज आज आपके हाथ में आ रही है वो क्या चीज है। अच्छा लड़का है, आप देखिए कि इब्राहिम का बाप कौन था, अगर माँ बाप को देखा जाता तो इब्राहिम के बाप कोई अच्छा बाप नहीं था। और हजरत नूह कौन थे, बेहतरीन बाप, तो उनका बेटा का नाम क्या था। गलतियां लग जाती हैं, कभी माँ बाप को ना देखे, फर्क पड़ता है इसका, लेकिन असल शख्सियत वो होती है जिसके साथ आपका मामला होने वाला है। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक और चीज इसमें है, आप चाहें तो कुछ सवाल जहन में तो भी लिख के दे दें ताकि बात आपकी आ जाए। इस एक लफ्ज में यानी कि इन यकून फकरा युग्निहिमुल्लाहु मिन फदलिही में, अगर आप देखें तो इशारतन अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाया। इस्लाम में शादी पे खर्चा अव्वल तो आता ही कोई नहीं है, और अगर आता है तो मर्द उसका जिम्मेदार होता है। एक ही खर्चा है सिर्फ शादी का, और वो वलीमा है। औलिम बिशादिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी जिबा करो। हजरत अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ का अल्लाह के नबी ने कहा, और अल्लाह के नबी की जितनी भी शादियां हैं उसमें सबसे बड़ा वलीमा वो होता है जैनब का, जिसमें बकरी जिबा की गई। जी आप फिर हम आप कुछ कहिए।
मैंने सेंटर में बात करती करके चली गई चैकरी में आई बेसिक पर, तो मुझे ये था कि अभी जॉब पे नहीं है। बेटा मुझसे ये कहता कि अभी मैं जॉब पे नहीं, आप देख पर की करें। मैंने कहा बेटे कुरान में है कि अल्लाह सुभान अल्लाह ने खुद फरमाया है कि शादी कर तो जो आने वाली है वो अपना रिस्क लेकर आएगी। और अलहमदुल्ला अभी शादी नहीं की हुई थी मार्च में, उसकी जॉब टेम्प्रेरी थी तो अब माशाल्लाह गवर्नमेंट खुल गई है।
तो आप में से जिसके जॉबलेस बेटे उनकी मंगनियां करते हैं, युग नहीं है मुल्ला जी।
और इसके अलावा जो आपने निकाह की बात की, हमारे लिए बहुत फर्स्ट टाइम बड़ा स्ट्रेंज था जब मरियम का निकाह हुआ, तो उन्होंने लड़के और जो विदान है उनको आमने सामने बिठा दिया क्योंकि उनका वाकई कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त अब पता चला कि वो सही तरीका है, वरना बेचारे बाप एक साइड पे बैठे हुए होते हैं बेटी की निकाह पे और लड़की को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है।
जी हमारे पता भी नहीं होता क्या हो रहा है, बस वो साइन कोई कर दे। बस तो वो किसी ने एक तो सवाल भी पूछा था कि अगर लड़की की जगह उसकी माँ नहीं साइन करती हो तो वो निकाह ठीक होगा क्या? बेटी से पूछा ही नहीं करता, मैं ही कर देती हूँ। दरख्वास्त आया होगा मैसेज, वो पता नहीं पार्लर गई भी थी तैयार होने का, मैं ही कर देती हूँ साइन। तो अब आप खुद सोच सकते हैं ना कि ये हमारे यहाँ की ही बातें हैं। तो बहरहाल आप देखिए कि अल्लाह ताला पे नजरें लगाए, नसीब कभी बंदा नसीब से नहीं भाग सकता। शादियों को आसान करें, आप सब अगर आगे जाके जिंदगी में भागना चाहते हैं ना अल्लाह के रास्तों में, तो जिंदगी को आसान करें, इन फ्रीजों से अपने काम करें और अल्लाह आसान करेगा। और अभी ये जो इन्होंने बताया कि बेटे को जॉब मिल गई होगा, अब ये बताएंगे जो शादीशुदा मर्द बेचारे जॉबलेस है उनके लिए क्या हुक्म है? दूसरी अभी आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही है। वैसे ये एक रिवायतों में ये बात मिलती है कि जब कभी हालात अटके हों तो कुछ चेंज जिंदगी में पैदा करो, किसमें जरूरत है अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करा सके है? फिर आप देखिए कि एक तो दो का जोड़ मिल जाता है ना, एक दो कुछ और भी फायदे होते हैं। कैसे रिस्क कैसे बढ़ता है इसका एक सेकंड, एक थोड़ा सा आपको और एंगल भी देना चाहती है। और वो क्या होते हैं ना, तो पैसे बेकार जाया बहुत करते हैं, फजूल खर्च होते हैं। एक एक टी शर्ट इतनी महंगी ले आए, खाना बाहर खाते हैं। अब बीवी घर में आई, वो बेचारी अगर सलीके वाली बीवी आप ले आए तो वो तो फिर समेट समेट के आपकी चीजें रखेगी, आपके कपड़े जोड़ेगी, घर में धोएगी, खाना घर पकेगा। फिर बाज दफा बीवियां शोहरों के कामों में हाथ भी बटा देती हैं। फिर एक और चीज कि जब जवानी के अंदर एक तो जिस्म के जज्बे मजबूत है, ऊपर से हालात तंग है, तो मर्द डिप्रेस रहते हैं, बाज दफा वो मुरझाए हुए हो जाते हैं। बीवी के साथ जब बैठे बात की, हंसे बोले क्या रहा आज का दिन कैसा रहा, तो खुश रहते हैं, तो उससे उनकी एफिशिएंसियां भी बढ़ जाती हैं। और इस तरह से आप देखिए कि वक्त के साथ ही सारी चीजें आगे चलती जाती हैं। अगर खुशी का इख्तियार दौलत और माल पे होता तो अल्लाह के नबी की बीवियां तो कभी उनके साथ खुश ना रहती। तो बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक दे। अफसोस की बात यह कि आज हमारे यहाँ बास लोगों की जिंदगी का मकसद ही, जिसको आप कहना चाहिए कि प्रेस्टीजियस शादियां करना हो गया, और एक मारूफ जुमला है और किस लिए कमाते हैं और कौन से मौके होते हैं खर्च करने के, तो शादी का मौका ऐसा नहीं है कि जिस पे आप बहुत ज्यादा खर्च करें। जी इशरत,
और अब शादी की जब भी और रुख्सती मांगी है मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ वगैरह किसी किस्म की तैयारी का, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब दिन होता है तो कोई भी आपको टेंशन नहीं होती।
जी बिल्कुल, अपने आप को हल्का रखें। बहुत वक्त होता है, जिंदगी भर शौक पूरे होते हैं, जिंदगी भर इंसान मिलता है लेता है देता है, लेकिन इन मौकों को आसान करना चाहिए। असल चीज के दीन की हिफाजत, हम दुनिया की हिफाजत करते रहते हैं, अंदर हमारे लाशौर में चुटकियां कट रही होती है कि ये दुआ करें नसीब बचो, सब कुछ हो, आप फिर एक और छोटी सी बात है कि हम बहुत सारा केयर करते हैं कि जी लड़की अच्छी है, बीमार ना हो, लड़का जो बिल्कुल ठीक ठाक करके देते हैं, शादी के साल बाद बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे हादसा हो जाए, कितने वाकयात आप सुनते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे सारी, जिसको आप कहना चाहिए कि जवाले नेमत से भी हमें बचाए, बस सिंपल तरीके से करें। अगर आपका मकसद अपने दीन के काम में है ना जुड़ा हुआ, तो आप इन कामों को फटाफट निपटाएंगे, निपटो, तुम भी फारिग हो, चलो तुम भी भुगतो, तुम भी भुगतो, अब तुम जाओ, तुम्हारा नसीब है। हर वक्त एक दिमाग के साथ नहीं सोचना, तो इंशाल्लाह आप देख पा देगी जी। आप पीछे से फंसी
तो खैर खुदा हो गई है, उनके बच्चे हैं तो क्या जीना ही है इनका।
जी निकाह नहीं होता जब लड़की का वली ना हो। लड़का तो कर सकता है अपनी शादी खुद, क्योंकि वो अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है, और मर्द में थोड़ी सी फिर भी आजादी होती है, लेकिन लड़की अपना निकाह खुद नहीं कर सकती। अगर ऐसा किसी ने किया है तो एज सुन एज उस लड़की के जो बाप या भाई हैं, जो भी उसके वली हैं, उनको तैयार करें जहनी तौर पर कि अब होना था जो हो गया, रह भी रहे दोबारा उनका वापस निकाह करवा दें जी। तो अब तो और भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि इसके बगैर बात नहीं बनती, और ये बहुत जरूरी चीज है। फिर एक अमूमन माँ बाप की मजबूरी पता क्या होती है रिश्ते करने में, छोटा खानदान हो, सास ना हो, तुम्हारी सास नहीं हो सो लकी यू आर। आपने सुना है लड़कियों की बातें, तुम कितनी खुशकिस्मत है तुम्हारी सास नहीं है। हाँ ये अकलौती बहू पता लग जाएगा जब अकलौती जाएगी, वो बेटे को छोड़ेगी नहीं माँ, क्योंकि वो इतनी इनसिक्योर फील करती है अकेले बेटों की माए, क्योंकि उनको पता है कि अगर लाड एक ही बहू के देख रहे हैं तो सारी खिदमत भी तो उसी से करानी है। तो ये जो बातें हैं ना कि घर ना हो, घर वाले ना हो, लड़का अकेला रहता हो, शरायत होती है हम इधर रखेंगे उधर रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के दिल की झूठी तसल्ली है। अगर आप देना चाहते हैं ना अपनी बच्ची को और बच्चे को, तो दुआएं दे कि बेटा हम जो कर सकते हैं वो किया, अब आगे तू जान और तेरा नसीब जाने। अब एक और अगला मसला क्या है कि शादी करना चाह रहे थे नहीं हो रही, तो अब उसका इलाज भी अल्लाह सुब्हान ने बता दिया कि वल यस्ताफिफिल्लज़ीना ला यजीदूना निकाहन। अब यहाँ देखिए, पहले माँ बाप की शामत थी ना शायद में, अब बच्चे बच्चियों की सख्ती है, जिनकी शादी नहीं हो रही या जिनके लिए अभी अल्लाह ताला का फैसला थोड़ा सा डिलेड है, पाकिस्तान नहीं इख्तियार करो। ये जो लफ्ज है ना यस्ताफिफ, ऐन फा फा से है, ऐन फा वो से भी हो सकता है। अब क्या है, नफ्स में ऐसी हालत पैदा होना जिसके लिए इंसान काबू पा ले और हया में रहे, बुराई में ना पड़े। इफ्फत माँ भी करना उर्दू में इसको कहते हैं, पाक दामन रहो, अपने दामन को साफ रखो।
तो कुछ होते हुए भी इस
भाभी नहीं बनते, कोई कमी नहीं होती लड़की में, कोई कमी नहीं होती लड़के में, दौलत भी है, पढ़ाई भी है, सब है, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया। देखिए अल्लाह ने अपना बनवाना है ना, शादी हो जाती है कोई खराबी नहीं, बच्चा नहीं होता है मुमकिन के नहीं। तो आप ये कुड़ने की बजाय मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरी बेटी की क्यों नहीं हो रही, मेरे बेटे को क्यों नहीं कोई मिल रही, या हुई तो टूट गई क्यों हुई, आप अल्लाह के खामोश इशारे समझिए कि अभी वो चीज तैयार हो रही है, अभी वो चीज जो आपको मिलनी है उसमें इंतजार है। एक होता है जाके कोई रेडीमेड चीज खरीद लाते हैं, और एक है जो टेलर मेड होती है, टाइम किसमें ज्यादा लगता है, टेलर मेड। तो अल्लाह जिनको टेलर मेड रिश्ते देना चाहता है उनको इंतजार करवाता है, शर्त एक है कि आप अल्लाह ताला के साथ राजी हो। अब मसला पता क्या है हमारा, वो मुआशरा जिसमें वक्त से पहले उम्र से पहले बच्चों के जज्बात तो भड़का दिए जाते हैं, बच्चों की मासूमियत तो बचपन में छीन ली जाती है, उनको गंदी चीजें और फिल्म ड्रामे और जिसको आप कह लीजिए कि कार्टून दिखाकर। अब ऐसे बच्चे जब जज्बात जवान हो गए, लेकिन शादी 18 साल से पहले, अब एक सवाल पैदा होता है आप आज के दौर पे। अब मैं फिर आपको बिल्कुल यही ले आती हूँ, इसी सोसाइटी या इसी मुआशरे में जिसमें आज हम सब जी रहे हैं, दुनिया का ये हिस्सा या वक्त। 13-14 साल का लड़का तैयार है शादी के लिए, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, चले जहनी ना भी जिस्मानी तैयार है। अब उस बच्चे को जिसको दाल सब्जी का रेट नहीं पता, जिसको हो सकता है कि पैसा खर्च करना ही नहीं आता, जो पैसे वो जाके उसकी दो और शर्टें खरीद रहा है, उसके साथ निकाह करे कौन, जो एक इशू है। हम यहाँ बैठ के कह देते हैं भी 16 साल के लड़के की शादी कर दो, मिसाल है। अब 16 साल का जरा आपने किस किसके माशाल्लाह 16 साल के बच्चे, एक दो तीन चार पांच, क्या आप उनको समझती हैं कि वो एक खा लेते हैं? वो तो आंसुओं से रोने लग जाते हैं जब उनकी मर्जी का खाना नहीं पकता। अम्मी खाना, अम्मी ऑमलेट, अम्मी पराठा। अब ये क्या खराबी है? यहां आप देखिए तरबियत की कमी है। इस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब निकाह टू जी कराया था, मैंने एक अलग सेशन दिया था, बेटों की तरबियत कैसे करें और बेटियों की तरबियत कैसे करें। एक मोमिना माँ जो होती है ना, अपने बच्चे को पैदा कर होने से लेकर 13 14 साल की उम्र तक इतना मिच्योर कर देती है कि अगर 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। हम उनके जो लाड देखते रहते हैं, बच्चे के हाथ में पैसा तो देते ही नहीं क्योंकि तरबियत नहीं की। 10 साल के बाद आप अपने बच्चे को पैसा खर्च करना सिखाएं, उसके हाथ से पैसा दिलवाएं, खर्च करवाएं, अल्लाह के रास्ते में दें, उसको ग्रोसरी में भेजें। आप साथ भी है ना, बेटा तुम चूज करो ये ले दिए, खामोश किस्म की ऐसी तरबियत कर दीजिए कि मेच्योरिटी आ जाए। हमारा ये जो स्टाइल है ना बच्चों के मुंह में स्पून फीडिंग का, और अभी ये बच्चे हैं, फिर उनके पहनावे, उनके लाड और उनके गुस्से और उनकी बातें। क्या आज 13 14 साल का बेटा तो छोड़ दीजिए, बेटी शादी के काबिल है हमारी? क्या चांद चढ़ा के आएगी, या वो क्या इज्जत करवा के आएगी अगर आप अपनी 13 साल की बेटी किसी के घर भेज दें जिसको अभी अपना उठ के बिस्तर भी ठीक करना नहीं आता। एक वक्त का खाना खिलाना पड़ जाए तो हो सकता है वो ये कहे मैं अंडा तो उबाल सकती हूँ, ये नहीं पता कि उसको पानी में डालना है या सी रखना चूल्हे पे। फर्क है ना? तो बच्चों की तरबियत उम्र से बड़ी समझ के करें, अपने बच्चों को बड़ा करें वक्त से पहले। अब ऐसे दौर में जहां हालात इस किस्म के हैं, आप कहते हैं कर ही नहीं सकते, तो फिर बच्चों की नजरों को झुकाएं। 10 साल की उम्र में यगुद्दु मिन अबसारिहिम पे अमल करा दें बेटों की, प्रैक्टिस कर करके बताएं। आपकी आंखों में आंखें डालते हैं ना तो जवाब ना दें, बेटा आंखें झुकाते हैं, भाई बहन की तरफ नजरें उठा के नहीं देखते। अच्छे बेटे माँ की आंखों में नहीं आंखें डालते, झुकाएं, फिर देखिए उनके अंदर कितनी खूबसूरती आती है। और इसी तरह से फिर आप देखिए कि रोजे रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि आप एक दफा जवानों के गिरोह के पास से गुजरे, आपने उनको मुखातिब किया, या माशर शबाब, ओ जवानों के गिरोह, यानी आपका अंदाज देखिए ऐसे जैसे आप किसी से कहें ओ टीनेजर्स। अच्छा लगता है बंदे को अपने रुतबे और अपनी बात के हिसाब से बात सुनना। तो आपने उनको मुखातिब करके फरमाया कि निकाह करो क्योंकि ये आंखों को झुकाता है ये। और अगर कोई निकाह की ताकत ना रखे तो रोजे रखे क्योंकि रोजा नफ्स के जज्बों को दबा देता है और इंसान की सोच अच्छी हो जाती है। तो कसरत से नफिल रोजे रखाना। ये जो पीर और जुमेरात का रोजा है ना, अगर यकीन करें माँ होने के नाते, दिल पे पत्थर रखें या जो भी रखें आई डोंट माइंड, लेकिन आप अपने बच्चों को 10 से 12 साल की उम्र में इसका आदत कर दें, और खास तौर पे बेटों को। ये 2 रोजे 1 हफ्ते के आपके बच्चों को हराम से बचा लेंगे। पहले तो हफ्ते में 2 दिन वैसे भी रोजे से होंगे, गलत चीज सोचेंगे कहाँ, और ना चाहते हुए भी आप देखेंगे कि रोजे का असर तबीयत पर आता है, नफ्स दबता है। हम खुद भी जब रमजान में अपनी कैफियत देखते हैं तो हमें इसमें अच्छी तरह पता चलता है। फरमाया कि रोजा आदमी की तबीयत का जोश ठंडा कर देता है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अबू हुरैरा से एक और रिवायत है, 3 आदमी वो हैं जिनकी मदद अल्लाह के जिम्मे है। एक वो शख्स जो पाक दामन रहने के लिए निकाह करे, दूसरा वो जो मुकातिब यानी माले किताबत अदा करने की नीयत रखे, और तीसरा वो जो अल्लाह की राह की में जिहाद के लिए निकले। ये निसाई तिर्मिजी इब्ने माजह रहमत की रिवायत है। तो दुआ कीजिए कि ऐसी आजमाइश में ना डले अल्लाह ताला किसी को कि जिससे वो निकल ही ना सके। उसके बाद आप देखिए अगला इशू, जो आखिरी इशू है हमारे आज के सबक का, और वो क्या है? मुकातबत। समझ लीजिए थोड़ा सा इसको तो फिर इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। अल्लाह सुभान तआला फरमाते हैं, ये आयत का कंटिन्यूएशन ही है बस बेसिकली, वल्लज़ीना यत्तगूनल किताब, और वो लोग जो चाहते हैं लिखत पढ़त, मिम्मा मलकत ईमानुकुम, तुम्हारे ममलुकों में से यानी गुलामों में से, तो क्या करो? फकातिबूहुम, तो इनसे मुकातबत कर लो। शर्त एक है, इन अलिम तुम खैरम, सॉरी, इन अलिम तुम फीहिम खैरन, अगर तुम समझो कि इनमें भलाई है। फिर उसके बाद क्या करो? मुकातबत करने के बाद वह आतू हम भी माली आता को, कितना प्यारा अंदाज है। फिर अपने उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उसमें से उनकी मदद करो ताकि तुम्हें वो पैसे वापस करके तुम्हारी गुलामी से वो निकल जाए। इतने हिस्से के अंदर जो कानून छुपा हुआ है वो मुकातबत का है। मुकातबत क्या होती है? थोड़ा सा इसको समझिए। अमूमन गुलामी जो है वो दो तीन किस्म की होती थी। एक तो ये कि जंगों में जो लोग आ जाते थे कैदी बनकर, उसमें भी मौजूद होती थी कि फिदिया देकर वो आजाद हो सकते थे। एक गुलामी होती थी खानदानी गुलामी, गुलाम का बेटा गुलाम, लौंडी का बेटा गुलाम, इसी तरह से बेटियां जो थी वो लौंडियां बनती थी। एक तीसरी गुलामी कहती थी किडनैप्ड किड्स, पकड़े हुए बच्चे, अगवा शुदा बच्चे। इस्लाम ने इंसान को हम सब के लिए आजादी नेमत है गुलामी से, क्योंकि गुलाम तो बेचारे नमाज भी नहीं अपनी मर्जी से पढ़ सकते, उनको तो मजबूर किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने गुलामों के जो आका है ना उनको एक कानून दे दिया। इमेजिन करें आपका एक गुलाम है, गुलाम ऐसा नहीं था जैसे आज के ड्राइवर या वो हैं जो आपको हर महीने छोड़ने की धमकियां दे दें, ऐसे नहीं होते थे। गुलाम भाग जाए तो उसकी नमाज नहीं कबूल होती थी जब तक कि वो वापस ना आ जाए, इतना ज्यादा हक होता था गुलामों के ऊपर। लेकिन आखिर तो इंसान है ना, अब गुलामों की कीमत होती थी। फीस माना हम बात कर लेते हैं कि गुलाम है उसकी कीमत 10,000 रुपए है, जिसका आप खरीद के ला सकते थे, अब वो आपके पास है। उस गुलाम का हक है कि वो गुलामी से निकले। अब वो क्या कहता है कि मैं आजाद होना चाहता हूं। अच्छा, कोई और अगर मुझे तुमसे खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 12,000 में खरीदेगा। तुम मुझे 12,000 दे दो तो तुम आजाद हो, ठीक है। अब वो गुलाम है, उसके पास पैसे कहां से आएंगे? अब उसके लिए करते क्या थे? आज के दौर में आप मिसाल ले लीजिए कि 5 pounds per hour की जॉब है, एक दिन में एवरेज कोई काम लगा ले तो 8 घंटे लगा ले, 40 pound हो गए रोज के, ऐसी होते हैं 40 pound per day। आप हिसाब लगा लें कि ये गुलाम मेरे पास अगर दिन में 8 घंटे काम करता है और मैं किसी और को बाहर से बुला के 5 pound देती हूँ, तो आज के इसके पूरे दिन के 40 pound मेरे पास जमा हो गए। ये लिख लेंगे आप, हफ्ते में 4-5 दिन हो गए, महीने के 40 घंटे हो गए, होते होते जिस दिन वो पैसे 10 या 12,000 पे आएंगे तो उस दिन वो गुलाम आपसे फिर आजाद है। और ये फर्ज है, अगर कोई गुलाम ये डील करना चाहे मालिक से तो मालिक को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है मुकातबत। इससे भी आप देख सकते हैं कि इस्लाम गुलामी को पसंद नहीं करता। मुआहदा करने वाला जो गुलाम है ना वो मुकातिब होता है, और मुआहदे को मुकातबत कहते हैं, आजादी की तहरीर, ये मानिए। अरबों में इंसान भेड़ बकरियों की तरह बिकते थे और मालदारी का इजहार गुलामों से होता था, किसके कितने गुलाम है। जैसे आजकल ज्यादा मुलाजिम होना स्टेटस सिंबल हो गया, और गुलाम रखना उस दौर की एक जरूरत भी थी, नीड थी, दुरुस्त समझा जाता था। कोई कितने भी रख ले, जैसे आज लोग सोना चांदी जमा करते हैं, उस दौर में लोग गुलाम खरीद लेते थे। तो यहाँ इस्लाम ने गुलामों की आजादी के असूल बता दिए, रहबत दिलाई। नंबर एक, कफारों में गुलाम को आजाद किया जाता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, कसम तोड़ने का कफारा भी गुलाम आजाद करना। फिर रगबत इतनी दिलाई गुलाम को आजाद करने में कि फरमाया कि जिसने किसी गुलाम को आजाद किया तो उसको गुलाम की तरह जिस्म के हर उसको जहन्नम से रहाइए। आपको तक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु हर जुमे एक गुलाम आजाद करते थे, और कहते हैं कि अगर मैंने किसी जुमे एक गुलाम आजाद नहीं किया तो अगले जुमे फिर दो किए। इतनी रगबत थी। हजरत अबू बकर को देख लीजिए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को भारी कीमत पर उन्होंने उमैया से आजाद कराया। उनके बेटे बाप कहा करते थे कि आप इनको आजाद करते हो तो इनसे कुछ खिदमत भी तो ले लिया करो, तो उन्होंने कहा इनको मैं अपने लिए आजाद नहीं करता, मैं अल्लाह के लिए आजाद कराता हूँ। तो आप देखिए कि बिलाल की सारी जिंदगी की नेकियां हजरत अबू बकर ने ना ले ली। तो ये अच्छी अच्छी नेकियां होती हैं जिसमें हिस्से जब डाल दें तो बेहतरीन तरीके से ये बात होती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात करके कहा कि ना सिर्फ ये कि उनसे मुकातबत करो बल्कि उनको पैसे अदा करने में मदद भी करो, सदका दो उनको ताकि वो वापस तुम्हें दे और तुम उनको आजाद करवा लो। यहां तक बात होगी मुकातबत की, ठीक है। आज के दौर में भी इंसान गुलाम है, फर्क क्या है? उस दौर में इंडिविजुअल स्लेवरी थी, आज इज्तमाई गुलामी है। नस्लों की नस्लें गुलाम है, जहनी गुलाम है, अपने मुल्कों के माल को खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते, कहीं एक्सपोर्ट और कहीं इंपोर्ट में, और कहीं उनकी मुश्किल टर्म्स को कबूल करते हुए यक तरफा शराइत पे कर्जे देने लेने, ये सब कुछ मौजूद है। अच्छा, आप यहां से एक चीज देखिए, एक तरीका क्या था कि इस्लाम आता, अगले दिन अल्लाह के नबी एक ऑर्डिनेंस ऑफिस नाफिज करते, आज से सब गुलाम आजाद है, क्या होता आपको पता, सोसाइटी में कोई आप में से बताएगा? बड़े बड़े अमीर लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट थी। तो ये किस पे जुल्म था? अमीरों पे जुल्म था। दूसरी सूरत है, बिल्कुल नहीं गुलाम आजाद होते, ये किस पे जुल्म था? गुलामों पे। इस्लाम ने क्या किया? बीच का रास्ता। ये है उम्मत वसत, जहन साजी की, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता तरबियत दी, बताया, खौफ दिला दिया। यहां तक के सहाबी कहते हैं, डर गए थे गुलामों के हकूक में कि खुद खजूर खाते थे जो सस्ती थी और गुलामों को रोटी खिलाते थे। जो बदर के कैदी आए थे कुफार की तरफ से, आपको था उनमें से बहुत सारे कैदी मुसलमानों का हुस्न सलूक देकर मुसलमान हो गए थे। ये दीन आज लोगों को दिखाने की जरूरत है, फिर फायदा होगा। और मालिक ऐसे भी थे कई के काम लेने से ज्यादा अपने बच्चों की तरह गुलामों का ख्याल भी रखते थे और उनको मदद को भी पूरा करते थे। कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने 10,000 या 1,000 गुलामों को आजाद किया। तो बहरहाल ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने दे दी। एक गोया कि आप कहले रेवोल्यूशन आया अल्लाह के नबी के दौर में, हर तरह से ये हालात हो गए कि एक कल्चर बदला, आका और मालिक की तकसीम खत्म की, तदरीज इख्तियार की, ग्रेजुअलिटी थी। ये गुलाम दौलत भी थे और दौलत कमाने का जरिया भी थे। बहुत सारे लोग अपने गुलामों से तिजारत करवाते थे, यानी हायर थे उनके लिए, पेड अनपेड वर्कर थे ये कह लीजिए। तो फिर ये सारी बातें करके अल्लाह तआला ने ये बात कर दी। अब इस आयत का अगला हिस्सा, और शायद ये आखिरी, मैंने पहले आखिरी कह दिया तो उसको काट दे। अगला टॉपिक बहुत अहम है, वला तुकरिहु फतयातिकुम, और ना तुम मजबूर करो अपनी लौंडियों को। फतयात जो है ना, फतुन की जमा। पीछे हमने क्या पढ़ा सूरत कहफ में? फतन, फतन है मुजक्कर, ठीक है, इतना समझ ले। फतन से फतातुन, ताय मरबूता लग गई, एक लौंडी, और उससे फतयातिकुम फिर जमा, यानी लौंडियां, जवान लड़कियां, कौन सी? जिनको तुम बांदी बनाकर लाते हो, उनको मजबूर ना करो, अलल बेगाई, बदकारी पे, या बदकारी पे जिसम फरोशी लिख लें, प्रोस्टिट्यूशन। इन अरदना तहसुना, अगर वो इरादा कर ले पाक दामन रहने का, तो फिर तुम उनको मजबूर ना करो। क्यों ऐसा करते हो? ली तब तक अरद अल हयात दुनिया, ताकि तुम हासिल करो दुनिया की जिंदगी का सामान। अरबों के यहाँ रिवाज क्या था कि वो अपनी बांदियों से पेशा करवाते थे, और इससे हासिल होने वाली कमाई खुद भी खाते थे और उससे दूसरों को मदद देते थे। चुनाचे इस हुक्म से जमाने जाहिलियत की इस शर्मनाक रिवायत को भी खत्म किया गया। इससे पहले एक रिवाज था कि अपने बाप की बेवा यानी सौतेली माओं से भी लोग, सूरत निसा 22 में इसको खत्म किया गया। यहां अल्लाह ताला ने लौंडियों से ऐसे काम करवाने से रोककर मुआशरे की तदहीर की। ये होती असल में इस्लाम का, ये होता इस्लाम का निफाज। और कहा वह मैं युकरे हुन, जो इनको मजबूर करेगा किस पे? इस गलत काम पे। फइन अल्लाह मिन बाद इकराहिहिन गफूर रहीम, तो यकीनन अल्लाह ताला इनके जबर के बाद बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब इस आयत में जो बात है इसको थोड़ा सा समझिए। अब्दुल्ला बिन उबई का ये प्रोफेशन था, लौंडियां रखकर उनसे जिस्म फरोशी करवाता और उस माल को फिर दौलत में लौटाता। मजबूर करके औरतों से ऐसे काम करवाना जो वो ना करना चाहे, और उसके बाद फिर उसको इसके ऊपर मजबूर करना। ऐसी औरतें जो होती थी, ऐसे जो थे, इनको चकले कहते थे। जैसे कोठा क्लब्स हमारे कल्चर में एक दौर में था ना, उनके जो गैंग्स थे, जो ग्रुप्स थे। इमाम इब्ने जरीर ने 9 औरतों के नाम भी लिखे हैं कि जिनके चकले थे। मवाखीर, मीम वाओ अलिफ खा यारा, कुरान में भी पढ़ चुके हैं, माखीरा कश्तियों के लिए। मवाखीर नाम की जगह होती थी लौंडियों के रहने के लिए। बड़े बड़े रईस और दौलतमंद लोग ये जगह बनवाते और उस पर उनके नाम का झंडा लगा दिया जाता था, यानी साइन लग जाता था ऊपर, कोई मायूब नहीं था। जैसे लोग बाजार से चीजें खरीदने आते हैं ना स्टोर्स में, इसी तरह इन अड्डों पे आते, पैसे देते, ख्वाहिश पूरी करते। जो पैसे आका ले लेता और उस लौंडी को कुछ ना मिलता। ये जो कमाई थी ना, उसको मखरुल बगीश कहते थे। बगी, बगी कहते ही बगावत को, है ना। इस सूरत में जो बच्चे पैदा होते थे वो एक और गुलाम तस्लीम करके आका के नाम पे एक और कह लीजिए कि प्रॉफिट बन जाता था। और अगर कोई इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहे कि ये बच्चा मैं लेता हूं, तो पहले उस लौंडी के आका को 100 ऊंट देता और फिर वो बच्चा भी देता, तो आप कह लें कि इनकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कड़ाही में। और ऐसा काम अमूमन अल्लाह माफ करे, हर दौर में जब ईमान कमजोर होता है ना, तो इस किस्म की कमाइयां जिसमें इस किस्म की जो गंदगी होती है, ये ऐसे ही लोगों का पेशा होता है। वो माल कमाने के अंदर इतने मगन हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि ये कमाई कहाँ से आई है। मुसैका और उमैमा नाम की दो लौंडियां थी अब्दुल्ला बिन उबई की, जिनसे वो ये काम लेता था। क्या आज के इस महज़ब अर्पण जी होता है। एक कॉलेज था, पाकिस्तान की बात है ये, और मुख्तलिफ लोगों से एक राय ली जा रही थी कि आप क्या बनना, लड़कियों से आप क्या प्रोफेशन लेना चाहती हैं, तो उनमें से कुछ ने कहा कि हम कॉल गर्ल्स बनना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा वाई, कहते हैं एक्साइटमेंट बहुत है इसमें और मनी भी बहुत है। और एक शौहर ने खुद इस बात का इकरार किया कि हाँ है मेरी बीवी कॉल गर्ल, लेकिन वो आम लोगों की कॉल गर्ल नहीं है, बड़े बड़े रईसों की कॉल गर्ल है, क्योंकि हमने अपना घर बनवाना है ना, इसलिए पैसे चाहिए। याद रखिए कि जब अकल पे पर्दे पड़ते हैं ना, तो इंसान ऐसे ही काम करता है। अब ये मौजू सुनते वक्त थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं, किसी तौर पे भी ये पेशा बाइज्जत नहीं रहा। फिल्मों में देख लीजिए तो ऐसे मर्द जो जो मर्जी गलत काम करें, लेकिन किसी तवाइफ से शादी करना चाहें तो शादी माँ बाप नहीं करने देते थे। लेकिन एक सवाल है, अगर वो तवाइफ बेइज्जत है, तो जिसने उसको इस काम पे मजबूर किया वो बाइज्जत कैसे हो गए? और जो वहां जाते हैं और बैठते हैं और उनके डांस और मुजरे देखते हैं, वो कौन है? क्या ये मुनाफ़कत नहीं है? अपनी फितरत के एतबार से एक जुमला लिखिएगा, शायद फायदा दे। फितरत के एतबार से एक औरत कभी जिस्म फरोशी नहीं करना चाहती। जिना हो सकता है एक औरत से, कभी कभार की बात है, लेकिन ये आदत नहीं हो सकती। औरत एक मर्द के साथ ही कंफर्टेबल रहती है, चले वो बॉयफ्रेंड बना के एक के साथ रह लेगी, ये हो सकता है, लेकिन हर दूसरे दिन पार्टनर चेंज करना ये इंसानियत नहीं, ये जानवरों की बात है। ये औरतें कौन सी होती हैं? नंबर एक, जो बचपन में अगवा हो जाती हैं, या बड़ी होकर अपनी गलत दोस्तों के हाथों ऐसे लड़कों के हाथों में पहुंचती हैं, और ऐसे वाकयात मौजूद हैं आज भी। कॉलेज स्कूल की लड़कियों की दोस्तियां लड़कों से हुई, उन लड़कों ने पहले उनसे खुद फायदा उठाया और उसके बाद फिर उनसे उनको किसी गैंग में ले गए और वहां ये सारे काम करवाए। साउथ अफ्रीका की एक रिपोर्ट है, 40% औरतें जिस्म फरोशी का काम करती हैं गुर्बत की वजह से। फिर आप देखिए कि इस औरत की तो बेचारी की कोई इज्जत नहीं, हालांकि इस्लाम की हमदर्दी इस औरत के साथ है, मत उनको मजबूर करो। क्यों? शादियों में आप उनको नचवाते हैं, अकीकों में उनको बुलाते हैं, आप तो बहुत अमीर है और बहुत दौलतमंद है, अपनी औरतों को पर्दों में बिठाने वाले दूसरों की औरतों को देखते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो दौलत वाले हैं। तो जितनी अगर बेइज्जत ये औरत है, तो इसको इस जगह पे पहुंचाने वाले भी इसके जिम्मेदार हैं। तो लिहाजा आज हमें इस मुआशरे के हिस्से के लिए भी काम करने की जरूरत है। आपको आयते बीर पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि नेकी का जज्बा हर एक के दिल में होता है। इन तवायफों से भी कभी पूछें तो ये भी पानी की सबीलें कहीं ना कहीं लगवा ही देती है। तो लिहाजा हमें दीन का ये पैगाम वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। अच्छा, अब कल तो लोग लाइव मुजरे देखने बैठने जाते थे ना, आज अब इसकी जरूरत कम रह गई, क्योंकि घरों में सारे मौजूद है मुजरे। तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि इन सारी चीजों को कसते बाप किया जाए। ये दीन जो मेरा और आपका हिस्सा है इस वक्त जिंदगी का, क्या दूसरों को इसकी जरूरत नहीं? किसी ऐसी लड़की को जिसको आज भी आप जानते हो जो गलत चीजों में पड़ चुकी हो, आप उस तक पहुंचे, उसको दीन सिखाएं। वरना याद रखिए, हालात मुसलमानों के, यानी एक सिस्टर ने अपनी बात शेयर की, कुफर से इस्लाम पे आई, चले लड़के से एक से शादी करने के लिए मुसलमान हुई, जब शादी हुई तो वो लड़का इंतहा दर्जे का बेअमल मुसलमान था। कहती कि मैंने शादी से पहले कुफर में शराब कभी नहीं पी थी, मेरे शौहर ने मुझे पिलवाई। ये कहकर नहीं, इस्लाम मियां बीवी पी सकते हैं और ये गंदगी मियां बीवी देख सकते हैं। तो कहती मैं तो नई मुस्लिम थी, मैंने ऐसे ही होता होगा। खैर किस्सा मुख्तर, कहानी लंबी है, लेकिन जो खुलासा है कि एक ऐसा भी दौर आया कि वो लड़का जो कि उबाश था थोड़े दिन उसके साथ रहा, लेकिन फिर उसकी हरकतें देखकर ये उससे खुश नहीं थी। किसी जगह शेयरिंग में रहते थे, वहां भी एक कपल था, दो कपल हो गए। इसका हस्बैंड करप्ट है, उस और उस दूसरे कपल की बीवी खराब थी। वो शरीफ सारा दिन घर में काम करता रहता है और बीवी बाहर है, और इधर मामला लड़ता। कुछ महीनों सालों में पेयर चेंज हो गए। उसने कहा कि तुम तलाक दो, उसने उससे ली, उसने उससे दी, और कहा कि वो उससे कर ले, समझ गए ना, क्रॉस क्रिस क्रॉस। वो जो शरीफ हस्बैंड था उसने खुदकुशी कर ली इस तकलीफ से कि मेरे साथ ये हालात हो रहे हैं। और आज हालात बिल्कुल फर्क है, जो एक घर में किसी की बीवी थी अब वो दूसरी औरत उसकी बीवी, और ये उसको छोड़ चुका है और ये उसके बच्चे को पाल रही है, और ये इस्लाम के नाम पे तमाचा। और वो कहती है मैंने कुरान को पाके देखा कि इस्लाम क्या है, अगर मैं इस कुरान के कोर्स में आने से पहले मर जाती तो मैं कहती शायद इस्लाम होता ही ऐसा। जो लड़की माँ बाप को छोड़ के आती है आपके पास इस्लाम के नाम पे, सही, आप बताइए कि आप उसको कौन सा इस्लाम दिखाते हैं। तो दुआ कीजिए कि माशरे के दबे पिसे हुए तबकों को हम अपनी रहमत, अपनी इस कुरान की छाओ में लेके आए। जितना दीन के इस पैगाम को आप आम कर सकते हैं करें, जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको अपने ऊपर लेकर फर्ज कर लें कि इस थोड़े से वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करना है, और अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद फरमाए और बेहतरीन तरीके से हमें इसमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकअल्लाह खैरन कसीबा सुन जज़ा उस्तादा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह हर ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशली जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होता है तो उसमें तो बहुत बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चेंजिंग अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करें और हमें मजीद रास्ते दिखाएं कि कैसे हम इस कुरान पर अमल कर सकते हैं और कैसे हम मजीद नेकियाँ कमा सकते हैं। दीज टॉपिक्स आर सो मच फ्रॉम आर डे टू डे लाइफ। जी बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। बस यहाँ पे हम भी अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।